तो आप सबको अच्छा लग रहा है इस पहाड़ी जंगल में बैठ के भक्तों के संग में थोड़ा कृष्ण कथा सुनना, थोड़ा कृष्ण कीर्तन करना। तो ऐसे समय हमें अपना बाकी जीवन भूल जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का अनमोल भेंट हमें इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा मन, हमारा ध्यान आज केवल हमें कृष्ण भावना भावित कार्यों में और वचनों में करना है। आज जो प्रवचन होगा वो कुंती महारानी की प्रार्थना का आखिरी से पहला श्लोक होगा। हम तो कई महीनों से कुंती महारानी की प्रार्थना समाप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, काफी बीच बीच में अंतर पड़ जा रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि इस बार ये दो श्लोक समाप्त हो जाएं। वैसे श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक और कृष्ण की प्रशंसा में किए गए जो भी वचन हैं उनके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द अंत जो है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है, परंतु फिर भी हमारा समय सीमित होने के कारण हम ये अंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज ये बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के 8वें अध्याय से हम ये पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भीमे नन्य विषया। मतेर मधुपते सकृत रतिं उद्वहताद अद्धा गंगे वोगं उदन्वती त्वयि मे नन्य विषया। मतेर्मधुपते सकृत रतिं उद्वहतादद्धा गंगे वोगं उदन्वती त्वयि मे नन्य विषया। मतिर्मधुपते सकृत रतिं उद्वहतादद्धा गंगे वोगं उदन्वती कुंती महारानी यहाँ प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, हे मधुपति, मेरी प्रार्थना ये है कि जिस प्रकार गंगा नदी पहाड़ों से आते हुए सीधे समुद्र की ओर जाती है बिना कोई रुकावट के, ठीक उसी तरह मेरा मन भी आपके प्रति सदा आकृष्ट रहे बिना कोई रुकावट के, बिना कोई प्रदूषण के, कोई दूसरा विचार मेरे मन में नहीं आए। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थनाएं सुनकर हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये भक्ति की परिपूर्ण अवस्था का वर्णन है। जब हमारा चित्त, हमारा मन पूरी तरह से अनन्य भाव से भगवान में रहे, दूसरे किसी भी विषय में हमारा मन भटके नहीं, सदैव भगवान का स्मरण करना और कभी भी भगवान को भूलना नहीं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। भक्ति भाव से, प्रेम से, कंस और अन्य ऐसे असुरी वृत्ति के लोग जैसे हिरण्यकश्यप, वो भी भगवान का स्मरण करते थे सदैव, परंतु ऐसे स्मरण को भक्ति नहीं किया जाता, नहीं कहा जाता, क्योंकि वो प्रेम से स्मरण नहीं करते थे, उनका स्मरण जो है वो द्वेष से उत्पन्न होता था, द्वेष या भय। परंतु कुंती महारानी यहां बतला रही हैं कि सदैव प्रेममयी भक्ति का लक्षण है कि हम, हमारा मन जो है स्वाभाविक तौर से, स्वाभाविक रूप से भगवान के चरण कमलों की ओर बढ़ते रहे। जब यह स्वाभाविक हो जाता है तब हम समझ सकते हैं कि हम हमारी भक्ति की परिपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। जब तक हम वैधि भक्ति में होते हैं तो हम नियमों का पालन करते हैं। नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर के स्तर में कैसे पहुंचेंगे, हमारी प्रगति कैसे होगी, भौतिक बंधन से हम मुक्त होंगे कैसे। तो नियम का पालन तो करना है, परंतु जैसे श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि इन सारे विधि विधानों का, विधि निषेधों का उद्देश्य क्या है, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरा, कि जितने भी सारे विधि और निषेध हैं वो सब इन दो विधि और निषेधों के किंकर हैं, दास हैं। एक है कि हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए और दूसरा कि कभी भी हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो जब ये स्मरण उसी प्रकार से स्वाभाविक हो जाएगा जैसे कि गंगा का बहना समुद्र की ओर स्वाभाविक है, तब हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। अब हम थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं जिनका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, जो भक्ति से हमें दूर हटा देता है। ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, हम ऐसे कोई कार्य भी कर बैठते हैं। इसलिए हमारे लिए भगवान का स्मरण करना एक संघर्ष जैसा हो जाता है। जब तक हम संग में रहते हैं उस समय थोड़ा बहुत मन भगवान की ओर रहता है, लेकिन सत्संग में बैठे हुए भी हो सकता है कि हमारा मन इधर उधर भटक जाए। हालांकि हम इतने सात्विक स्थान में बैठे हैं, यहां पर जंगल में, ये सात्विक स्थान माना जाता है। शहर है, रजोगुणी स्थान होता है। शराब का दुकान इत्यादि ये तमोगुणी स्थान है। तो सतोगुणी स्थान जो होते हैं वो आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, लेकिन ऐसे सात्विक स्थान में आने के बाद भी हमारा मन भटकता है। अभी आप एक चीज देखिए, अभी आप प्रवचन में बैठे हैं, अब प्रवचन थोड़ा समय चलेगा, एक घंटा डेढ़ घंटा जो भी हो, जब प्रवचन का अंत हो जाएगा तो आप जरा नोट कीजिए, चाहे तो आपके पास डायरी में लिख लीजिए कि कितना कितने बार आपका मन प्रवचन से हट गया, कितना समय आपका मन प्रवचन के ऊपर रहा। तो इस समय बद्ध अवस्था के कारण हमारा मन स्वाभाविक रूप से इस संसार की वस्तुओं के प्रति, घटनाओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति जाते रहता है। लेकिन जब हम भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे तब हमारा मन संसार से विचलित न होकर सीधे भगवान के चरण कमलों की ओर चलेगा और वहां पर स्थित रहेगा, और किसी कारणवश संसार की समस्याओं की वजह से या कोई ऐसे आपातकालीन अवस्था की वजह से अगर हमारा मन संसार में उलझ गया तो ऐसे उलझने के बाद भी मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर दौड़ते जाना चाहिए, बल्कि ऐसे आपातकालीन अवस्था में हमारा मन और भी तीव्रता से भगवान के पास जाएगा। जैसे कि कुंती महारानी और द्रौपदी और पांडवों की अवस्था थी, तो भगवान के विषय में हमारे चित्त को केंद्रित करना, ये हमारे चित्त का सही उपयोग है। ऐसे कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम किसी के प्रति प्रेम न करें, हमारे मन में कोई इच्छा न हो, हम शून्य हो जाएं। ऐसे कई दार्शनिक हैं और आध्यात्मिक साधक हैं, वो ऐसा प्रयत्न करते हैं, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि जीव पत्थर नहीं है। जीव रस का भूखा है। रस मतलब क्या है? जो भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसको रस कहते हैं, जो कि एक स्वाद है, एक बहुत ही मधुर मीठा स्वाद है, जो स्वाद इस संसार के वस्तुओं में नहीं मिलता है। ये संसार का जो भोग है, ये संसार का जो रस है, वो उस भक्ति के रस का एक विकृत प्रतिबिंब है, छाया है, वो सच्ची रस नहीं है। इस दुनिया के रस को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, भोग कहते हैं, और सच्चे रस को भक्ति कहते हैं। तो हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति को, हमारे किसी भी व्यक्ति या चीज से आसक्त होने की प्रवृत्ति को हम खत्म नहीं कर सकते, केवल उसका केंद्र बिंदु, उसका केंद्र जो है हमें बदलना है, संसार से उठाकर हमें ये सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थानांतरित करना है। बस यही हमारे साधना भक्ति है। हमारा सारा जीवन इसी के लिए होना चाहिए कि किस तरह हमारा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित रहे। येन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी प्रकार से मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रहना चाहिए, हर अवस्था में, हर समय। भगवान के भक्तों में मन केंद्रित होना और भगवान में केंद्रित होना दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के भक्तों में मन केंद्रित होना ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि भगवान के भक्तों की जब हम रक्षा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं इत्यादि, तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति के बच्चे से आपने प्रेम किया, कुछ इसे कुछ खुश किया, तो उसके पालक जो है वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, लव मी लव माई डॉग, प्रभुपाद इस कहावत को कहते थे। कि अगर आप मुझसे प्रेम करना चाहते हैं तो आप मेरे कुत्ते से पहले प्रेम कीजिए, क्योंकि कुत्ता मेरे से बहुत प्रिय है। आपको जानते हैं कि पश्चिम देशों में कुत्ता बिल्ली पालना वो बहुत पसंद करते हैं लोग, और कुत्ता उनके लिए बहुत प्रिय है। तो किसी व्यक्ति के कुत्ते को आपने कुछ संभाला, कुछ किया, तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को खुश करना है तो ऐसे चीज से प्रेम करो या ऐसे कोई कार्य करो जो कि उसके हृदय के बहुत करीब है। तो साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम, भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में साधु हैं, साधुओं के हृदय में मैं हूं। तो भगवान भक्तों के अलावा किसी को जानते नहीं, और भक्त भगवान के अलावा किसी को जानते नहीं। तो अगर भगवान को खुश करना है, अगर भगवान से आसक्त होना है हमें, तो भगवान के भक्तों में पहले आसक्ति बढ़ानी चाहिए। तो फिर भगवान में आसक्ति खुद ब खुद हो जाएगी और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। ऐसे पुराणों में श्लोक है कि सर्व आराधनों में से विष्णु की आराधना या कृष्ण की आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन विष्णु या कृष्ण की आराधना से भी श्रेष्ठ है तदीयानाम समर्चनम। तदीय मतलब उनसे जो संबंधित है, उनसे जो उनका जो बहुत प्रिय है, और विशेष करके उनके भक्त। तो अगर भगवान को खुश करना है तो उनके भक्तों को खुश करना है। जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्तों की अच्छी सेवा हो रही है, उनके भक्तों की उनको भक्तों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, तो भगवान खुद ब खुद खुश होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पिछले ही श्लोक में कुंती महारानी कह चुकी हैं, अथवा विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंधी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। इसके पहले श्लोक में कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर चुकी हैं कि हे भगवान, मेरा जो मेरे स्वकेश, स्वकेश मतलब मेरे जो स्वजन हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, कौन है? पांडु और वृष्णि वंश के जो वंशज हैं, मेरे बेटे पांडव, और फिर मेरे पिता के कुल के जितने भी सदस्य हैं वृष्णि वंशज, वो सब मेरे लिए बहुत प्रिय है और मेरे मन में उनके प्रति आसक्ति बहुत तीव्र है, और ये आसक्ति इतनी है कि एक बंधन पैदा कर रहा है। स्नेह पाशम, पाश मतलब रस्सी, स्नेह मतलब प्रेम। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि हे कृष्ण, स्वकेशु में मेरे ये जो स्वजन हैं, जो पांडु हैं और वृष्णि हैं, इनमें मेरा जो स्नेह है, जो दृढ़म, जो बहुत ही तीव्र है, इमं छिंधी, इसको आप काट दीजिए, फाड़ दीजिए, आप इसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय लेने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो हे विश्वमूर्ति, हे विश्वात्मा, आप ये मेरे लिए कर दीजिए, ये आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर होगी। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि मेरे सदस्यों के, मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी आसक्ति खत्म हो जाए। तो ये तो बातें विरोधाभास लगती हैं। एक और हम कहते हैं कि भगवान के भक्तों से आसक्त होना, ये भगवान से आसक्त होने से ज्यादा है, क्योंकि भक्तों से आसक्त हुए बगैर भगवान से आसक्त नहीं हो सकते, भक्तों की सेवा किए बगैर भगवान को खुश नहीं कर सकते, एक और ये कहा जा रहा है। और दूसरी ओर कुंती महारानी जो एक आदर्श वैष्णवी हैं, वो कह रही हैं ये पांडव हैं, इनसे मेरी आसक्ति काट दीजिए, वृष्णि है, इनसे मेरी आसक्ति काट दीजिए। अब ये तो महान भक्त है ना, पांडव और वृष्णि, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये विरोधाभास है। तो कुंती महारानी ऐसा क्यों नहीं कह रही हैं कि ये पांडव और वृष्णि हैं, इनके प्रति मेरी आसक्ति बढ़ाइए, वो काटने की बात क्यों कर रही है, कोई बताएंगे आप क्या कारण है? हाँ, क्योंकि वो उनको अपने रिश्तेदार समझती हैं, अपना पुत्र समझती हैं। वो इसलिए उनसे आसक्त नहीं है कि वो कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त तो कई थे उस समय, लेकिन उनकी विशेष आसक्ति उनके परिवार के सदस्यों के प्रति है। इसलिए वो कह रही है कि इस आसक्ति को आप हे कृष्ण काट दीजिए। अब अगर हमारे परिवार में सभी वैष्णव हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ, इससे अच्छा एक और चीज हो सकता है। क्या है वो? कि हमारे परिवार में ऐसे कोई हो जो बहुत इतना विरोध करते हैं हमारे कृष्ण भक्ति का, कि इतना उस विरोध से हमें इतना तनाव होता है कि कृष्ण के चरण कमलों में और भी तीव्रता से आश्रय लेने के बजाय और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। ये उससे बेहतर है। लेकिन जो भी हो, कृष्ण हमें उस अवस्था में रखते हैं जो अवस्था हमारे भक्ति के लिए, प्रगति करने के लिए अनुकूल है। तो चाहे हमारे परिवार के सदस्य भक्ति मार्ग में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं या वो विरोध कर रहे हो, कोई बात नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है हमारे परिवार के सदस्य वैष्णव हैं तो हम उनके प्रति बहुत आसक्त हो जाएंगे। लेकिन हम किस लिए उनके प्रति आसक्त हो रहे हैं? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हमारे पत्नी हैं, या माता हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं। तो सच्ची आसक्ति जिसकी बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं वो आध्यात्मिक आसक्ति है जो आत्मा के स्तर पे होती है। ये आसक्ति जिसके बारे में कुंती महारानी कह रही हैं और जिस आसक्ति के पाश को वो कटवाना चाहती हैं श्री कृष्ण के द्वारा, ये आत्मा के स्तर पे नहीं है, ये शरीर से संबंधित है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे ये हैं, वो हैं। इसलिए वो ऐसे प्रार्थना करती हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी आसक्ति आप काट दीजिए, लेकिन वहां पर बात रोकी नहीं, उन्होंने आगे भी बात को बढ़ाई और वो इस श्लोक में क्या बता रही है कि अभी मुझे आसक्ति चाहिए आप में। मेरी आसक्ति है मेरे परिवार में, तो उस आसक्ति को काटिए और आसक्ति अब आपके चरण कमलों में बढ़ाइए। तो आसक्ति खत्म नहीं हो सकती, केवल आसक्ति का जो केंद्र है वो बदल सकता है। चाहे हम कृष्ण में आसक्त हों या चाहे हम माया में आसक्त हों। इस संसार में कई लोग हैं जो वैराग्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इस संसार से विरक्त होने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये एक केवल नकारात्मक, एक नेगेटिव कार्य है कि हम बस इस दुनिया से तंग आ गए हैं, हैरान हो गए हैं, हम इसे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ये संसार दुख का कारण है। जितना हम विषय, इंद्रिय विषयों में हम लगेंगे उतना ही इनका कार्य, इनका फल जो है हमारे ऊपर लागू होंगे, हमें दुख होगा, कष्ट होगा। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञान योग का के मार्ग का पालन करते हैं, वो सोचते हैं कि ये इस संसार से हमें कुछ नहीं देना लेना देना नहीं है, हम संन्यास लेंगे। संन्यास लेंगे तो संसार से विरक्त हो जाएंगे और शून्य शून्य अवस्था में रहेंगे। ये संसार मिथ्या है। तो वो केवल एक नकारात्मक, एक नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। वो केवल आसक्ति को काटना चाहते हैं, इस संसार से आसक्ति को काटना चाहते हैं, लेकिन किस चीज में इस आसक्ति को स्थानांतरित करना है वो नहीं जानते। कोई संसार से श्रेष्ठ चीज है क्या जिसमें हमारी आसक्ति बनी रहे? वो नहीं जानते। ये ज्ञान नहीं होने की वजह से सब मामला चौपट हो जाता है। जैसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति है जो किसी कारखाने में या कहीं नौकरी करता है, वो कारखाने में या उसके दफ्तर में वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसको अच्छी नहीं लगती वो नौकरी, तो इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगला मैं नौकरी कहां करूंगा, क्या करूंगा, अगला व्यवसाय क्या करूंगा, कुछ नहीं। तो उसकी अवस्था क्या होगी? ऐसा है कि अगर किसी को नौकरी, एक नौकरी छोड़नी है तो कम से कम हाथ में दूसरी नौकरी होनी चाहिए ना। ऐसी नौकरी छोड़ के बैठेगा तो क्या होगा, ज्यादा कष्ट होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कई लोग हैं जो यहां संसार से आसक्ति को काटना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है, यहां कष्ट है, आप यहां से दूर होना चाहते हैं। यहां से आसक्ति निकाली तो डालेंगे कहां वो आसक्ति, कहीं तो उसको केंद्रित करना है। लेकिन वो कहां उसको केंद्रित करना है ये लोगों को ज्यादातर नहीं मालूम है, इसलिए समस्या हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोगों को यह पता है कि उनको क्या नहीं चाहिए, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। आप समझे इस महत्वपूर्ण बात को? लोगों को यह पता है कि उनको क्या नहीं चाहिए, लेकिन यह नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, थोड़ा कष्ट हुआ तो ठीक, ये नहीं, 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 ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करके फिर रहा क्या, वो नहीं मालूम। क्योंकि लोगों का ज्ञान संसार से परे नहीं है, उनका चित्त केवल इस संसार के भीतर ही मंडरा रहा है, इसलिए उनको कुछ जानकारी नहीं है कि यहां से कुछ हमारी आसक्ति को निकालेंगे, काटेंगे तो आसक्ति डालेंगे कहां। आसक्ति डालनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में। संबंध स्थापित किए बिना कोई आसक्ति नहीं हो सकती, कोई कार्य नहीं हो सकता। आप में से जो व्यापार करते हैं, आप तो जानते हैं कि अगर आपको किसी के साथ कुछ लेन देन करना है, किसी से कुछ खरीदना है, किसी को कुछ बेचना है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से आपको एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ऐसे अक्सर देखा जाता है कि दो व्यापारी होते हैं, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कोई होटल में वगैरह ले जाता है खिलाने के लिए, दोनों आपस में बैठ के खाते हैं, कुछ करते हैं, आपस में संबंध स्थापित करते हैं, फिर हाँ ठीक है, फिर सौदा हो जाता है, थोड़ा विश्वास पर आपस में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में भी पति पत्नी के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध के अनुसार हर एक व्यक्ति कार्य करता है तो आसक्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमारा जो संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है उसको पुनः जागृत करना, और अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन असफल होगा, अपूर्ण होगा। जब तक हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हमें यह पता नहीं होगा कि आसक्ति किस में डालनी चाहिए। ये दुनिया, इस दुनिया की रचना भगवान ने इस तरह से की है कि जो भी वस्तु हमें आज आकर्षित करता है, जो भी वस्तु हमें आज सुख देता है, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से हम कल निराश हो जाएंगे। ये निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह है? ऐसी कोई घटना है, ऐसे कोई वस्तु है, ऐसे कोई व्यक्ति है जो आपको आखिर निराश नहीं करेगा? हर एक व्यक्ति की मृत्यु आज न कल होनी है। अगर भी हमारी कोई बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति सेवा कर रहा है और हम भी उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंततः मृत्यु आना है और मृत्यु हमारे सेवा को नष्ट कर देगा, हम दुखी रह जाएंगे। तो इस दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके प्रति अगर हमने आसक्ति को केंद्रित किया तो हम निराश नहीं होंगे। निराश होंगे ही होंगे, और जब होंगे तो कोई ऐसे एक सकारात्मक उपाय हमारे पास होना चाहिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन कोई होना चाहिए। कि ठीक है यहां से हम निराश हो गए, परंतु यहां तो हम ऐसे आसक्ति रखेंगे जो हम कभी निराश नहीं होंगे, वो केवल कृष्ण है। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि कृष्ण भक्ति करना और कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है जिसको हम भूल गए हैं उसको पुनः जागृत करना। यहां कुंती महारानी अनन्य भक्ति की बात करती हैं। अनन्य विषया, अनन्य भक्ति मतलब कि दूसरे किसी भी वस्तु के बारे में सोचना नहीं, जानना नहीं, कुछ नहीं, हम और भगवान कृष्ण और कृष्ण के भक्त, बस इतना ही। जो निराकारवादी लोग होते हैं, निर्विशेषवादी, मायावादी, वो हालांकि संन्यास भी लेते हैं लेकिन फिर भी उनको ऐसे सकारात्मक कोई उद्देश्य की जानकारी नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि बस ये सब मिथ्या है और इसको सब हमें खत्म करना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है जिसको वैकुंठ जगत कहते हैं। इस वैकुंठ जगत के अंदर भगवान श्री कृष्ण और उनके अनंत अवतार निवास करते हैं उनके अनगिनत भक्तों के साथ में, और वहां अनंत लीलाएं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं और हमेशा रहेंगी, होती रहेंगी, और वहां सब कुछ चिंतामणि है। वो चिंतामणि धाम है, हमारे हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। वहां पे कल्प वृक्ष हैं, वहां विविधता है, जो जिस विविधता को यहां हम देख रहे हैं ऐसे ही विविधता अपने शुद्ध स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में वो वैकुंठ जगत में विद्यमान है। यहां पर अगर हम एक आम के वृक्ष के पास जाते हैं तो हमें अंगूर नहीं मिल सकते, और कभी कभी आम के वृक्ष के पास जाने के बाद भी खट्टे आम मिल जाते हैं। यह हमारा भी आम का पेड़ और हम आम लेने के पहले किसी दूसरे ने चोरी कर लिया होता है। तो यहां आम के पेड़ से आम भी कभी कभी नहीं मिलता, तो अंगूर की बात कहा। लेकिन भगवान के धाम में यहां भी ऐसे वृक्ष हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, लेकिन अब वहां आप आम के वृक्ष के पास जाएंगे और अंगूर चाहेंगे तो आपको मिलेगा, आपको तरबूज चाहिए मिलेगा। तो यह है कल्प वृक्ष धाम जो स्वयं प्रकाशमान है, वो कोई सूर्य चंद्र अग्नि के ऊपर निर्भर नहीं है अपने प्रकाश के लिए, ज्योति के लिए। ये वहां पे श्री कृष्ण की जो दिव्य शरीर की कांति है उससे सब कुछ बिल्कुल प्रज्वलित हो जाता है, सब वहां रोशनी सब जगह फैल जाती है। जब श्री कृष्ण गोकुल में अपनी बाल लीला करते थे तो सब ब्रजवासियों के घर में जाके माखन इत्यादि चोरी किया करते थे और उनके जो मटके हैं वो फोड़ देते थे, ऐसे तरह तरह के शरारत करते थे। तो कभी कभी ब्रज की गोपियां माता यशोदा के पास आती थी और उनसे शिकायत करते थे कि आपका जो बेटा है आपको लगता है कि बहुत मासूम है लेकिन आप नहीं जानती कि कितना बदमाश है और एक क्या क्या शरारत करता है, और फिर वो सारा अपने शिकायतों का लिस्ट उनको दे देती थी। उसने आज ये किया, वहां उसके घर में जाके वो किया, यहां जाके ये किया। तो माता यशोदा बोलती थी कि मैं क्या करूं बताइए। तो गोपियां कहने लगती, वास्तव में उनको अच्छा लगता था कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण ये सब कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता था अंदर से, लेकिन बाहर थोड़े लीला को और बढ़ाने के लिए थोड़ा एक वो ऐसे गुस्सा होने का ढोंग करती थी। फिर वो कहती थी हम सब कुछ अंधकार में रखते हैं फिर भी ये लड़का अंदर आके ले जाता है, कैसे? क्योंकि उसके शरीर के ऊपर जो गहने हैं उसमें जो रत्न है और रत्नों के जो प्रकाश से रोशनी से उसको सब दिखाई पड़ता है, इसलिए अंधेरे में भी जाकर वो कहां दही मक्खन रखा है वो जानता है, वो चोरी कर लेता है। तो आप इसके रत्न जो है शरीर के ऊपर जो रत्न है वो निकालेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा वो। तो माता यशोदा ने कहा ठीक है शरीर के ऊपर जो रत्न है निकाल देती हूं। नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो, क्योंकि वास्तव में जो है रत्न निकालने के बाद भी इस बच्चे के शरीर से जो कांति है, जो रोशनी आ रही है, उससे सारा जो अंधेरा कमरा जो है वो रोशनी से भर जाता है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये है श्री कृष्ण की दिव्य कांति, उनके शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इस ब्रह्म ज्योति से सारा आध्यात्मिक जगत जो है वो स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। और जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड के भीतर सब कुछ सूरज की रोशनी के ऊपर निर्भर है, सूरज की रोशनी के ऊपर प्राण निर्भर है। यहां पर अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो यहां पर हम यहां बैठ नहीं सकते, अनाज उत्पन्न नहीं हो सकता, ये पेड़ नहीं रहते, हम नहीं रह पाते। तो उसी प्रकार से भगवान के दिव्य शरीर की कांति से, इस ब्रह्म ज्योति से ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ये सारे भौतिक सृष्टि जो है वो भगवान के ज्योति, शरीर की ज्योति के ऊपर निर्भर है। लेकिन इस ज्योति को ही आप केवल देखेंगे तो भगवान को और भगवान के धाम में जो विविधता है उसको आप पहचान नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सोच लीजिए कि आप सूरज की ओर देख रहे हैं, मुश्किल है ना देखना, और उस दिशा में एक हवाई जहाज जा रहा है आसमान में। आप हवाई जहाज को देखते देखते जा रहे हैं और अब वो हवाई जहाज सूरज के सामने आ रहा है। तो जैसे ही वो सूरज के सामने आएगा तो सूरज का प्रकाश इतना तेज है कि आप उस समय उस हवाई जहाज को नहीं देख पाएंगे, केवल रोशनी ही दिखाई पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार से जो ऐसे निर्विशेषवादी, निराकारवादी लोग होते हैं, जो केवल भगवान के निराकार से, निराकार स्वरूप से आसक्त होते हैं, वो उसके पीछे जो व्यक्तित्व है, उसके पीछे जो विविधता है, जो लीला है, भगवान का रूप है, वो नहीं देख पाते। इसलिए ईशोपनिषद में भक्त ने प्रार्थना की है, हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्तम पोषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे प्रभु, आपके सुंदर मुखारविंद के सामने जो तेज है, प्रकाश है, उसको कृपया हटाइए, उस तेज के पर्दे को हटाइए ताकि मैं आपका सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर पाऊं। तो भगवान का धाम है और भगवान के धाम में उतनी ही विविधता है जितना यहां है इस भौतिक जगत में, बल्कि ये जगत जो है ये भगवान के धाम का एक प्रतिबिंब है। इसलिए यहां विविधता होने का कारण यह है कि वहां पे विविधता है भगवान के धाम में। तो ऐसे लोग हैं जो यहां से संसार से विरक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे एक आध्यात्मिक जगत है जहां इतनी विविधता है, इतनी लीलाएं चल रही हैं, भगवान का इतना सुंदर रूप है वहां पर, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। ये सकारात्मक उपाय, सकारात्मक ज्ञान, पॉजिटिव नॉलेज उनको नहीं है, इसलिए बस यहीं पर वो रहते हैं। लेकिन कुंती महारानी ऐसी नहीं है। कुंती महारानी अच्छी तरह से जानती हैं कि भक्ति क्या चीज है और कृष्ण क्या है और कृष्ण के धाम में क्या है। तो वो केवल आसक्ति, संसार से आसक्ति से छुटकारा नहीं चाहती हैं। उसके बाद वो ये श्लोक को कह रही है कि मुझे आपके प्रति आसक्ति चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि इस दुनिया में लोग भोग और त्याग के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी बहुत ज्यादा भोग करते हैं, भोग कर करके थक जाते हैं, फिर त्यागी बन जाते हैं, फिर उनको अच्छा नहीं लगता, अरे हम ये त्याग देंगे, बहुत कर लिया। जैसे व्यक्ति मान लो एक सिनेमा देखता है, फिर उसी सिनेमा को दो बार देखेगा, पांच बार देखेगा, दस बार देखेगा, फिर क्या करेगा, अरे अब नहीं जाना, वो सिनेमा का नाम नहीं लेना हमारे पास। उब जाते हैं। इस संसार की वस्तुओं की पहचान ऐसी है कि वो हमें ज्यादा समय तक तृप्त नहीं कर सकती है, उनमें वो शक्ति नहीं है, वो संसार में शक्ति नहीं है कि हमारे हमको, हमारे चित्त को सदा आकृष्ट बना करके रखे।
वो शक्ति संसार में नहीं है, वो केवल कृष्ण में है और कृष्ण भक्ति में है। तो इसलिए हम इन दोनों के बीच में घूमते फिरते हैं, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग त्याग। जैसे घड़ी में कभी वो पेंडुलम होता है, वो ऐसे टिंग टोंग ऐसे घूमता है, ऐसे कभी ऐसे तो कभी ऐसे। तो उसी प्रकार से हमारा चित्त कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग। जब हैरान हो जाते हैं जीवन से, कोई ऐसा धक्का मिलता है जीवन में, तो त्यागी बन जाते हैं। लेकिन माया ऐसे है, भगवान की इतनी शक्ति भगवान ने ऐसी बनाई है कि उस धक्के को हम जल्दी से भूल जाते हैं और फिर से हम आ जाते हैं वापस, भूल जाते हैं कि हमें कैसे धक्का मिला जीवन में, फिर भोग करने के आगे तैयार, फिर ठोकर खाते हैं, फिर त्यागी बन जाते हैं, फिर उस ठोकर को भूल जाते हैं, फिर भोगी बन जाते हैं। तो भोगी त्यागी, यही हमारा इतिहास इस जगत में अनादि काल से, अनंत काल तक ये करते रहेंगे जब तक कि हम भक्ति नहीं करेंगे भगवान की। दोनों ही झूठे अवस्था हैं, मिथ्या की अवस्थाएं हैं, क्योंकि ये केवल शरीर के ऊपर आधारित है। ना भोग टिक पाएगा ना वैराग्य टिक पाएगा जब तक कि भगवान की भक्ति न हो। बिहार में एक नदी है जिसको फल्गु नदी कहते हैं, यह गया के पास में है। और यह नदी की विशेषता यह है कि आपको ऊपर से पानी दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल बालू दिखाई पड़ेगा आपको, रेती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अज्ञान की वजह से चलता चलता उस रेती के ऊपर चले तो सीधे वो नीचे गिर जाएगा पानी में, क्योंकि ऊपर रेती है लेकिन नीचे पानी है। थोड़ा सा रेती के अंदर आप हाथ डालेंगे तो आपको पानी मिलेगा। तो यह है फल्गु नदी। तो प्रभुपाद जी का प्रवचन हम उस दिन सुन रहे थे, उसमें प्रभुपाद कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति किए बिना इस संसार से विरक्त होने का प्रयास करते हैं, उनका वैराग्य फल्गु वैराग्य है, फल्गु नदी के समान है। क्यों? ऊपर से लगता है जटा है और सब है, वल्कल मतलब जो ये वृक्ष के छल उसको डालते हैं और बहुत तपस्या करते हैं, बाहर बाहर से तो वैराग्य है, लेकिन हृदय के अंदर उंगली डालिए क्या लगेगा आपको, सारे भौतिक इच्छाएं भरे पड़े हैं। बाहर से वैराग्य, वैराग्य का पोशाक, वैराग्य विरक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न भी चल रहा है, परंतु अंदर से भोग की कामनाएं, भोग की वासनाएं भरी हुई हैं। क्योंकि यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति किए बिना, कोई सकारात्मक कोई उपाय ढूंढे बिना केवल विरक्त हो जाए इस संसार से। इसलिए माता देवहूति श्रीमद् भागवत में कहती हैं, नेह यत् कर्म धर्माय न वैराग्य उपकल्पते न तीर्थ पद सेवाये जीवन नपि मृतो हि सह। वो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को मनुष्य होना है, मनुष्य सभ्यता तो ये है कि उसको धार्मिक कार्य करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म का पालन करने का मतलब है कि धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहे हाँ मैं धर्म में विश्वास करता हूं लेकिन धार्मिक कार्य नहीं करे, केवल मन में ही मैं धर्म का पालन करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। धर्म के अनुसार जो कार्य हैं उनको करने चाहिए, लेकिन ऐसे धार्मिक कार्यों को करने से क्या होना चाहिए, वैराग्य उपकल्पते, विरक्ति संसार से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए मन में, नहीं तो हमारे धर्म का क्या मतलब है, हमारे धार्मिक क्रियाओं का क्या मतलब है। लोग कई हैं जो मंदिरों में जाते हैं, जो तरह तरह के पालन करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि धर्म का उद्देश्य क्या है, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं। इसलिए वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं और उनकी आसक्ति संसार से हटती नहीं है। न वैराग्य उपकल्पते, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है भी जो धार्मिक क्रियाओं को करता है, वैराग्य को भी अपने जीवन में उत्पन्न करा देता है, फिर भी बात समाप्त नहीं हो जाती है। तीर्थ पद सेवा ये, उसको तीर्थ पद भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वैराग्य की परिपूर्णता यह है कि कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लग जाए, अन्यथा वैराग्य का कोई मतलब नहीं। तीर्थ पद यह भी भगवान कृष्ण का एक नाम है, जिनके चरण कमलों में सारे तीर्थ स्थान निवास करते हैं, जिनके चरण कमल ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है, यह है भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी सेवा करना यह हमारे वैराग्य की परिपूर्णता है, और वैराग्य को प्राप्त करना यह हमारे धर्म की परिपूर्णता है, धार्मिक क्रियाओं की परिपूर्णता है। तो अगर हम इस ऐसे भक्ति को प्राप्त नहीं करें, श्री कृष्ण की सेवा नहीं करें, तो देवहूति माता कहती है जीवन नपि मृतो ही सह, कि जीते हुए भी हम मरे हुए व्यक्ति के बराबर हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन के लक्षण क्या है, आप बता सकते हैं? आपको कोई पूछे कि मृत वस्तु में और जीवित वस्तु में अंतर क्या है, आप क्या जवाब देंगे? जीवित वस्तु चलायमान है और क्या? चेतन है और भक्ति कर सकता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान भी हो जो चेतन है, चलता फिरता है, बोलता है, ज्यादा ही बोलता है, है ना, तो सब कुछ है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो फिर वो मृत व्यक्ति के समान है। तो वो जीवित नहीं है, मरे हुए व्यक्ति के बराबर है। तो प्राण होना मतलब भक्ति होना, भक्ति नहीं है तो प्राण नहीं होने के बराबर, चलता फिरता मुर्दा, यही है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, केवल चेतना होना लेकिन कृष्ण चेतना नहीं होना, ये कोई मतलब नहीं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं इस सूरज की किरणों को अंग्रेजी में सनशाइन कहते हैं, केवल शाइन नहीं कहते, अभी शाइन आ रहा है, नहीं सनशाइन आ रहा है, तो शाइन मतलब सनशाइन, किरण मतलब सूरज के किरण। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं चेतना मतलब कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्ण के बिना कोई चेतना नहीं हो सकती। अगर कृष्ण नहीं होते तो हमारी चेतना नहीं हो सकती थी, इसलिए आत्म साक्षात्कार करना है तो सबसे पहले कृष्ण को भी पहचानना है। जैसे कि जब हम अपने आप को किसी दर्पण में, आईने में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सूरज की किरणों को देखना है, फिर अपने चेहरे को देख सकते हैं, है ना। जब तक कि हम रोशनी को नहीं देखें अपने आप को कैसे देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अपने आप को भी पूरी तरह से पहचानना है तो कृष्ण को पहचानना चाहिए, अन्यथा हम अपने आप को पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। अगर हम इतना भी जान गए कि हम आत्मा है, फिर भी ये काफी नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो ये आत्मा आया कहां से और आत्मा जाएगा कहां, आत्मा का संबंध क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सब, इन सब प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो भगवान का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है वो है प्रेम का संबंध, उसको पुनः जागृत हमें करना है। इसलिए चेतना मतलब कृष्ण चेतना। तो जब तक भक्ति नहीं है किसी व्यक्ति में, हम जान सकते हैं कि वो जीते हुए भी जीवित नहीं है। तो बेलगाम में कितने जीवित लोग हैं? बहुत कम है ने? मुर्दे कितने हैं? बहुत ज्यादा मुर्दे हैं। तो केवल चेतना होना एक दृष्टि से ठीक है, एक जड़ वस्तु से ये श्रेष्ठ है, चेतना है, चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है। लेकिन ये खाना पीना तो क्या पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात है ये कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना होना। श्रील प्रभुपाद जी और सुंदर बात बताते हैं कि अगर एक खटमल है, वो राजा के सिंहासन के ऊपर जाके बैठा है, राजा भी बैठा है, वो खटमल भी कहीं पे एक कोने में बैठा है, तो क्या दोनों बराबर हो जाते हैं? अगर खटमल बोलेगा मैं भी सिंहासन पे बैठा हूं तो मैं राजा हो गया, कोई मानेगा? एक ही स्थान में होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। राजा राजा है, उसका स्थान तो निराला ही है। ठीक उसी प्रकार से हम यहां पे हैं, एक साथ में बैठे हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि कौन कहां का है। एक साधारण आदमी सड़क में चल रहा है, बाहरी दृष्टि से दूसरों के समान दिख रहा है, साधारण कपड़े पहन रहा है, साधारण है दिखने में हर दृष्टि से, लेकिन वो है कृष्ण भावना भावित। तो है वो सामने, उसके पास में एक और व्यक्ति जा रहा है, शराबी व्यक्ति जा रहा है, वो उसके काम के लिए जा रहा है, भक्त अपने काम से जा रहा है, लेकिन सड़क के ऊपर दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों हैं एक जगह में, या दोनों एक ही ट्रेन में बैठे हैं, रेलगाड़ी में पास पास बैठे हैं, इसका मतलब नहीं कि दोनों एक समान है, एक सीट में बैठे हैं। इसलिए जैसे खटमल और राजा में अंतर है, दोनों व्यक्ति में भी बहुत अंतर है। अंतर क्या है? चेतना का अंतर है। ये व्यक्ति हालांकि उस शराबी के पास में बैठा है, रेलगाड़ी में बैठा है, लेकिन फिर भी यहां नहीं है, वो भगवान के धाम में है, क्योंकि उसकी चेतना भगवान में स्थित है। तो हमारा भौगोलिक जो स्थान है वो महत्वपूर्ण नहीं है इतना, लेकिन हमारा चित्त कहां है, हमारे चित्त का एड्रेस क्या है, वो महत्वपूर्ण है। इस शरीर का पता, शरीर का एड्रेस क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम ताजमहल होटल में रहते हैं या हम कोई धर्मशाला में जाके रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये सब भौगोलिक जो अंतर है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि हमारी चेतना का पता क्या है, हमारी चेतना वैकुंठ में है या इस संसार में है। तो कुंती महारानी हम सबको सिखला रही हैं कि भक्त जो है वो बहुत विशेष होता है, और आदर्श ऐसे भक्ति क्या चीज है और क्यों हमें प्राप्त करना चाहिए, ये कुंती महारानी इस श्लोक में हमको बतला रही है, हम सबको। श्रील प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि ठीक है, अब हमने मान लिया, हम पूरी तरह से मान गए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन ये कैसे करें? प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कृपा कहां से आएगी, कैसे मिलेगी? प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के प्रति आसक्ति चाहिए तो भगवान की कृपा चाहिए सबसे पहले। तो प्रश्न ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि कृपा मिलेगी कैसे? तो प्रभुपाद जी इसका भी उत्तर देते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करके। जब भक्तों के संग में रहते हुए हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, नवधा भक्ति, प्रहलाद महाराज ने जो वर्णन किया है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, इन अंगों से भगवान की सेवा करना, तो ऐसे जब हृदय से सेवा करते हैं, छल कपट से मुक्त होकर, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, और जब वो कृपा बरसाते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति तीव्र आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ये तीव्र आसक्ति प्रेम में परिवर्तित होता है। कृष्ण प्रेम इसको कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम। और ऐसे प्रेम जब हो जाता है तो क्या होता है, कृष्ण बिक जाते हैं। कृष्ण भक्त को अपने आप भक्त के हवाले अपने आप को कर देते हैं, बेच डालते हैं श्री कृष्ण अपने आप को भक्तों के हवाले। लोगों को पता नहीं है कि मूल्यवान वस्तु क्या है इस दुनिया में, बिना वजह के बहुत ज्यादा मूल्य देते हैं किसी ऐसी वस्तु के लिए जिसकी कीमत नहीं है। अगर भगवान को खरीदना है तो कीमत ज्यादा नहीं है। हां, दुनिया के धन के दृष्टि से देखेंगे तो कीमत जितना भी देंगे उतना कम है, लेकिन एक और कीमत है और वो है प्रेम। पुराणों में ये श्लोक है जो आप सबने सुना होगा, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कई बार इस श्लोक को हम बोल चुके हैं प्रवचनों में। बहुत सरल और सुंदर श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भक्ति का महत्व क्या है, भक्ति की शक्ति क्या है। भगवान को खुश करना ये मुश्किल नहीं है। अगर हृदय में भक्ति हो, प्रेम हो, और भगवान को हमने तुलसी दल अर्पण किया है और गंगा जल अर्पण किया, तो भगवान इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं। विक्रीणिते विकुंठक तक, अपने आप को बेच डालते हैं भगवान भक्त के प्रति। इसलिए भक्ति का एक लक्षण यह है, श्री कृष्ण आकर्षणी, कि श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर सकती है यह भक्ति। ये भक्ति का एक गुण है, लक्षण है। हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारा सौंदर्य, हमारा घर, हमारी प्रतिष्ठा, ये सब भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकते। केवल हमारी भक्ति, हमारा प्रेम ही भगवान को आकर्षित कर सकता है। और जब भगवान ऐसे आकर्षित हो जाते हैं भक्त के प्रति, तो वो ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि भक्त का प्रेम इतना तीव्र होता है कि भगवान सोचते हैं कि मैं क्या करूं, इस ऋण को मैं कैसे चुकाऊं, और वो चुका नहीं पाते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में हम पढ़ते हैं कि गोपियों का, वृंदावन के गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना शुद्ध था और इतना तीव्र था कि श्री कृष्ण उस प्रेम के बदले में कुछ दे नहीं पाए गोपियों को, और वो कहे कि मेरा ऋण जो है हमेशा के लिए रहेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है, न पारे हम निरवध्य संयुजान स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुनां। श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियां, न पारे अहम, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? निर्वध्य संयुजाम, आपकी भक्ति जो कि बिल्कुल छल से मुक्त है, छल रहित है, इस भक्ति का जो पुरस्कार आपको मिलना है, ये उसको कीमत है, मैं नहीं चुका पाऊंगा, मेरी वो क्षमता नहीं है। स्वसाधु कृत्यम, जो आपने किया है इसका जो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए वो मैं नहीं दे सकता आपको। कब तक नहीं दे सकता? विबुध आयुष, मतलब जो देवता है जैसे ब्रह्मा जी आदि हैं, उनकी जो आयु है वो बहुत लंबी है, तो ब्रह्मा जी का आयु तो इस सारे ब्रह्मांड के आयु के बराबर है। तो ब्रह्मा जी के आयु के अंत तक मैं आपका ऋण चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका प्रेम इतना शुद्ध है और इतना शक्तिशाली है। क्यों? आपने क्या किया? याह मां अभजन, आपने मेरा भजन किया, और आपने मेरी सेवा करने के लिए क्या किया? गेह श्रृंखला संवृश्च, संवृश्च मतलब काट दिया, गेह श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जंजीर, और गेह मतलब घर। तो आपके जो पारिवारिक आसक्ति की जंजीर है, जो बंधन है, रस्सी है, संवृक्ष, उतने आप उसने उसको आपने काट दिया दुर्जरा। हालांकि इसको काटना बहुत कठिन होता है, फिर भी आपने मेरी सेवा के लिए, मेरी भक्ति के लिए ये काट दिया। इसलिए प्रतियातु साधुना, इसलिए आपकी जो भक्ति है, आपकी जो सेवा है, वही आपका पुरस्कार है। मेरे पास और कुछ नहीं है, यह है भक्ति। एक दफ्तर में या कारखाने में अगर कारखाने का मालिक अपने कर्मचारी को कहे, आपकी सेवा इतनी बढ़िया है, आप दिन रात केवल मेरे लिए मेहनत करते हो, मैं इतना ऋणी हूं तुम्हारे प्रति कि मैं, मेरे पास कोई तनख्वाह ही नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा पुरस्कार है। तुम दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हो, सुबह आके रात को जाते हो, इतना फैक्ट्री में काम करते हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा तुम्हारा सेवा है, तुम्हें इतना ऋणी हो कि तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, तो कोई करेगा काम? एक भी कर्मचारी है जो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यहां गोपियां क्या भगवान को छोड़कर भाग गई? जब कृष्ण ने ऐसे कहा कि आपने इतनी मेरे सेवा की है, इतनी सेवा की है, क्या नहीं छोड़ा है और त्यागा है आपने मेरे लिए? सब कुछ त्याग डाला है, जो कि त्यागना बहुत कठिन है, आपने वो उन चीजों को त्याग दिया है। किसी साधारणतः एक महिला को अपने परिवार को त्याग देना ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को अपने परिवार के प्रति ज्यादा आसक्ति होती है, बच्चों के प्रति इत्यादि। तो इन गोपियों ने अपने बच्चों को भी त्यागा था, अपने पतियों को त्यागा था, अपने घर को, सब कुछ, यहां तक कि अपने लज्जा को त्यागा था, जो कि एक महिला के लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है त्यागने के लिए। कोई महिला नहीं चाहती है कि अपना समाज में बुरा नाम हो। गोपियों को मालूम था कि हम अपने घर को बीच रात में छोड़कर जाएंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, हमारे परिवार के लोग हमको निकाल देंगे घर से, और समाज में भी हमारी बदनामी होगी, और कोई हमें अच्छी नजर से देखेगा नहीं। लेकिन गोपियों ने परवाह नहीं की, इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने इतना सब मेरे लिए किया है कि मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। तो गोपियों ने फिर भी ये नहीं कहा कि अरे इतना हमने आपके लिए किया और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ठीक है हम छोड़ देंगे भक्ति करना। गोपियों ने ऐसा नहीं कहा। ये असली भक्ति है, ये हमारे भक्ति की परीक्षा है। जो सकाम भक्त होते हैं, जो अपरिपक्व होते हैं, वो कोई अपने कार्य को संपन्न करने के लिए अपने कोई उनकी कोई कोई हेतु होता है, कोई कारण होता है, भौतिक उद्देश्य से यहां पर भगवान के पास आते हैं। और कभी कभी जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो भगवान को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं है, उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उनका प्रेम शुद्ध है, छल रहित है, दोष रहित है। इसलिए कृष्ण ऐसे प्रेम से बिल्कुल प्रेम के वश में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि यहां श्री कृष्ण के प्रति जो इस प्रेम की बात, यहां आकर्षण और आसक्ति की बात कुंती महारानी कह रही हैं, वो बहुत विशेष है। तो ऐसे प्रेम का फल क्या है? कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं, कृष्ण अपने आप को बेच डालते हैं, तो फिर क्या होता है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान स्वयं भगवान उनके भक्त के सामने उपस्थित हो जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं भक्त के, जैसे कि ध्रुव महाराज के साथ हुआ। ध्रुव महाराज ने नारद जी के आदेशों के अनुसार तपस्या की, भगवान का भजन किया, यह सत्य युग की बात थी। और थोड़ा समय के बाद, कई महीनों के बाद, भगवान ध्रुव महाराज के सामने उपस्थित हुए। सबसे पहले ध्रुव महाराज को अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन हुआ, अपने अंदर ही अंदर दिव्य चक्षु से वो भगवान को देख रहे थे, भगवान का सुंदर चतुर्भुज रूप का दर्शन वो कर रहे थे, उनके मानस पटल में, उनके हृदय के कमल में। और उस दर्शन को करके, वो देखकर वो इतना प्रभावित हो गए थे कि अपने मन को वहां से हटा नहीं पाए, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। समाधि की अवस्था मतलब जब हमारा ध्यान भगवान के ऊपर इस तरह केंद्रित हो जाता है कि कभी भी वो हट नहीं सकता, तो उसे समाधि कहते हैं। एकाग्र चित्त से भगवान के ऊपर ध्यान करने को की अवस्था को समाधि कहते हैं। लेकिन अचानक हुआ यह कि ध्रुव महाराज का ध्यान भंग हो गया। उस समय वो केवल एक बालक थे, 5 साल के, तो हैरान हो गए कि अरे क्या हो गया, अचानक कैसे मेरा ध्यान भंग हो गया, इतना सुंदर रूप में हमारे मेरे मन के अंदर देख रहा था, हृदय के अंदर, ऐसा सुंदर रूप अचानक कहां गया, वो क्यों वो भंग हो गया। जैसे एक भूखा आदमी बस भोजन खा ही रहा है और अचानक कोई थाली उसके सामने से निकाल दे, कैसे लगेगा उस व्यक्ति को। तो उसी प्रकार से तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन हृदय के अंदर प्राप्त हो गया ध्रुव महाराज को, और अचानक भगवान ओझल हो गए हृदय के अंदर से। तो जब ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, तो ध्रुव महाराज विचलित हो गए। ऐसे विचलित अवस्था में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी कि क्या हो गया, क्यों ऐसे हो गया, अंदर में ध्यान कर रहा था भगवान के ऊपर, अचानक भगवान ओझल क्यों हो गए। और जब आंखें खोली तो क्या देखा, वही रूप जिसका दर्शन वो अंदर कर रहे थे, अब वो बाहर है। तो इस समय ध्रुव महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके उनका मन इतना प्रसन्न हो गया भक्ति से कि उनके शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए वो। और आखिर में जब भगवान ने ध्रुव महाराज के सिर का स्पर्श अपने शंख से किया, तब जाके ध्रुव महाराज कुछ बोल पाए, फिर सुंदर स्तोत्रों से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर भक्त ऐसे ही भगवान की सेवा करता रहेगा तो उसे भी भगवान का दर्शन इसी प्रकार से होगा, वो भी भगवान को आमने सामने देख पाएगा जैसे ध्रुव महाराज ने देखा था। और ये कोई कल्पना नहीं है, लेकिन इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस समय के पहले हम भगवान का दर्शन करने के लिए हम सोचें, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए, हाँ आतुरता होनी चाहिए। लेकिन आतुरता होना ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन में भगवान को देखना चाहें और नहीं दिखे तो निराश हो गए, भक्ति छोड़ दी, नहीं। आतुरता के साथ साथ निष्ठा श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे कि भगवान अगर दर्शन दे भी नहीं तो हम निराश नहीं हो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, भगवान को देखने के लिए इतने इच्छुक न हो, बल्कि भगवान की सेवा इतनी अच्छी तरह से करो कि भगवान तुम्हें देखने के लिए आतुर हो जाएंगे, फिर भगवान खुद आ जाएंगे सामने देखने के लिए। मैं देखना चाहता हूं कौन है मेरा भक्त जो मेरी सेवा इतनी अच्छी तरह से कर रहा है। तो शनै शनै भक्ति करते करते हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। इसलिए हमें कभी हमारी भक्ति से निराश नहीं होना चाहिए। यहां पर कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को मधुपति कह के संबोधित करती है। मधु नाम का एक असुर था तो उसका वध किया था भगवान ने, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन या मधुपति। ऐसे इसके कई अर्थ हैं और भी हैं। और यहां पर बता रहे हैं, गंगा इव ओघम उदनवती, उदनवती मतलब बहते जाना, जो समुद्र की ओर, ओघम बहना इव, जिस तरह से, तो जिस तरह से गंगा हिमालय से उतर के, पहाड़ों से उतर के सीधे समुद्र की ओर जाती है, बीच में कुछ भी बंधन आए फिर भी ऐसे वैसे करके निकल जाती है गंगा और समुद्र में पहुंच ही जाती है, कोई नहीं रोक सकता गंगा जी को। ठीक उसी प्रकार से जो अनन्य भक्त होता है उसका मन भगवान से कोई भी हटा नहीं सकता है। जब हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, उनको वहां के मुसलमान नवाब ने धमकी दी कि अगर तुमने ये भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करना बंद नहीं किया तो तुम्हें हमें मृत्यु दंड देंगे, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरे मुंह से कृष्ण नाम निकलना बंद नहीं होगा, यहां तक कि अगर आपने मेरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया तो मेरे शरीर का हर एक छोटा टुकड़ा जो है कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा, क्योंकि कृष्ण मुझ में समा गए हैं, मेरे हर रोम रोम से कृष्ण निकलता है, मैं कृष्ण नाम के उच्चारण के बिना मैं रह नहीं सकता, बल्कि मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन की ओर जा रहे थे तो वाराणसी में रुके। आप जानते हैं कि वाराणसी ये मायावादियों का राजधानी है, है ना, उस बहुत सारे बड़े बड़े मायावादी सन्यासी वहां रहते थे और आज भी हैं, लेकिन विशेष करके उस जमाने में। तो उन्होंने देखा कि ये एक सन्यासी है जिसने भारतीय संप्रदाय, जो कि एक मायावादी संप्रदाय है, इसमें दीक्षा लिया है, लेकिन फिर भी एक भावुक लोगों की तरह, साधारण अनपढ़ लोगों की तरह ये सड़क के ऊपर नृत्य कर रहा है, गीत गा रहा है, ढोल बजा रहा है, ये सब क्या है, ये तो सन्यासी को शोभा नहीं देता है। सन्यासी को चाहिए कि वो गंभीर रहे और वेदांत का अध्ययन करे और संसार से विरक्त हो जाए, लोगों से, लोग के बीच में उठे बैठे नहीं। तो वो महाप्रभु की निंदा करने लगे और उनके नेता थे प्रकाश आनंद सरस्वती, और एक बार उनके भक्त, महाप्रभु के भक्त की योजना से दोनों का एक साथ में मीटिंग हो गया, एक सभा हुई जहां सारे मायावादी सन्यासी आए और चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर आए। और जब वो वहां पर आए तो महाप्रभु एक निम्न स्थान पर बैठे जहां पर अंदर प्रवेश करने के पहले लोग पैर धोते हैं, तो उनकी नम्रता को देखकर और महाप्रभु के शरीर के तेज को देखकर प्रकाश आनंद सरस्वती और सारे मायावादी सन्यासी आकर्षित हो गए। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो निराकार ब्रह्म तेज तो उनके शरीर की कांति है और इस ब्रह्म ज्योति के प्रति मायावादी लोग आकर्षित होते हैं, तो महाप्रभु जानते थे इसलिए उन्होंने अपने तेज का प्रदर्शन किया, आकर्षित हुए वो और उनकी नम्रता को देखकर वो तुरंत उठे, अरे गोस्वामी जी आप नीचे क्यों बैठे हैं, आइए आइए हमारे साथ में बैठिए, आसन पर बैठिए। तो महाप्रभु कहने लगे नहीं, मैं तो बहुत नीच हूं, आप सब श्रेष्ठ संप्रदाय के हैं, सरस्वती संप्रदाय के हैं आप, मैं तो भारतीय संप्रदाय का हूं। नहीं 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 आप आइए यहां बैठिए। अच्छा स्वामी जी आप ये बताइए, आपने इतने अच्छे भारतीय संप्रदाय में, हमारे जो मायावाद संप्रदाय उसमें आपने दीक्षा लिया है और वो भी केशव भारती महाराज से जिनको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप ऐसे भावुकता से ये कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, वो भी सड़क के ऊपर साधारण लोगों के साथ में मिलजुल कर करते हैं, ये कुछ हमें समझ नहीं आई बात। सन्यासी को चाहिए कि वो गंभीर रह के वेदांत का अध्ययन करे, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसा है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया था दीक्षा देते समय कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम वेदांत का क्या पाठ करोगे, तुमको वेदांत समझ में नहीं आएगा, तुम केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करो। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वरपुरी ने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि वो इन मायावादी सन्यासियों को बताना चाहते हैं कि भक्ति के बिना, कृष्ण नाम संकीर्तन के बिना, केवल वेदांत का पठन करना ये समय को बर्बाद करना है। श्रम एव ही केवलम, अथ पुंबुद्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान प्रसन्न को प्रसन्न करना ये हमारे सन्यास ब्राह्मण इत्यादि वर्णाश्रम का कर्तव्य है, परिपूर्णता है। तो महाप्रभु कहने लगे, तो मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि तुम वेदांत नहीं समझोगे, तुम केवल कृष्ण नाम का संकीर्तन करो और फिर सब जगह जाके कृष्ण नाम को बांटो। तो हमने वो करना शुरू किया, लेकिन हे सरस्वती जी, हे गोस्वामी जी, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, जब मैं जाप करने लगा तो बस पता नहीं क्या हो गया, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, मेरा शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे और मैं कृष्ण नाम को लेना छोड़ नहीं पाया। तो मैं घबरा गया, तो मैं मेरे गुरु महाराज के पास गया और कहा कि हे गुरु महाराज, आपने कैसा मंत्र मुझे दे दिया कि मुझे क्या ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर क्या भूत सवार हो गया, कि क्या हुआ, कि कभी रोता हूं मैं, कभी हंसता हूं मैं, नाचता हूं मैं, नाम लेने, ये मंत्र लेना बंद नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो और मैं भाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे मिला, क्योंकि तुमने अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर ली है, शुद्ध कृष्ण नाम तुमने लेना सीख लिया है। ये नाम का ही स्वभाव का स्वरूप है, नाम का ही लक्षण है, गुण है, इसलिए इसमें कोई चिंता नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे नाम लेता है, शुद्ध नाम, उसके मन में ऐसे सब उत्पन्न होना ये तो स्वाभाविक है। तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए महाप्रभु कहने लगे, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं चाहते हुए भी कृष्ण नाम लेते रहता हूं, ये मेरे मुख से निकलते रहता है। तो ये है स्वाभाविक, स्वाभाविक तौर से मन आकर्षित होना। भगवान की भक्ति कृष्ण नाम के उच्चारण से सरलता से प्राप्त होती है। तो भक्ति में आसक्त होना मतलब भगवान के नाम में आसक्त होना। तो इस प्रकार से अगर हम ये सीख लेते हैं कुंती महारानी की शिक्षाओं के द्वारा कि हमारा मन भी स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर चलता रहे और भगवान के चरण कमलों में हमेशा रहे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी तरह का एक श्लोक माता देवहूति श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में बोलती हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, कई श्लोक है, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा और कुछ और कई श्लोकों को हम सुनाना चाहते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी तरह की होती है और जिस भक्ति की बात कुंती महारानी यहां पर कर रही हैं वो कैसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक है।
अभिसंधाय हिंसाम दंभम मात्सर्यम एववा संरम्भे भिन्न दृग्भावम मुहि कुर्यात् सतामसः।
अभिसंधाय, जिसकी ऐसी दृष्टि है या जिसका ऐसा मत है, किस प्रकार की दृष्टि, किस प्रकार का मत, हिंसाम, जो हिंसा की दृष्टि रखता है दूसरों के प्रति, दंभम, जिसके मन में बहुत घमंड है, अहंकार है, मात्सर्यम, जो बहुत ईर्ष्या रखता है दूसरों के प्रति, संरम्भी, जो बहुत क्रोधी व्यक्ति है, हमेशा दूसरों के प्रति क्रोध करता है, क्रोधित अवस्था में रहता है सदैव, भिन्न दृक् भावम, और ऐसे भिन्न दृक् मतलब उसका जो, उसकी जो चेतना है कुछ अलग है, भगवान की सेवा से कुछ हटकर है, शुद्ध नहीं है। मई कुर्यात स तामसः, वो अगर मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है कोई व्यक्ति, परंतु बहुत क्रोधी है, दंभी है, हिंसा करता है, द्वेष करता है, तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति जो है वो तमोगुण में कहलाती है, तमोगुणी भक्ति है। तो हमें जानना चाहिए कि भक्ति तो शुद्ध है, लेकिन भक्ति करने वाला शुद्ध नहीं हो तो क्या होगा? करने वाले के ऊपर भी निर्भर होता है। भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, शुद्ध है, लेकिन तरह तरह के लोग भगवान की सेवा करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे जिनके अंदर ऐसे दुर्गुण होते हैं और वो सोचता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हूं और दूसरों का हमेशा दोष ढूंढता है। उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो भी वैष्णव है उनको हमें सम्मान करना चाहिए, जैसा भी चरित्र उसका क्यों ना हो, वो डाकू हो, लंपट हो, कुछ भी हो, अगर वो वैष्णव है तो सम्मान करना चाहिए। परंतु परंतु क्या? संग नहीं करना चाहिए, उसे दूर ही रहना चाहिए। तो कभी कभी ये ऐसी बातें होती हैं जो जिनकी वजह से भक्त लोग कभी थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए हर एक वैष्णव हमारे सम्मान के लिए, मान के लिए योग्य है, लेकिन जब हम संग करते हैं तो बड़े सावधानी से करना चाहिए। किंतु हालांकि सभी भक्त हैं, लेकिन ऐसे संग की हमें आवश्यकता है जिस संग की वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो व्यक्ति ऐसे तमोगुणी हैं और जो ऐसे गुणों के अधीन होते हैं, उनकी भक्ति तमोगुणी भक्ति कहलाती है। और फिर रजोगुणी भक्ति क्या है, इसका वर्णन भी कपिल देव कहते हैं। क्षमा कीजिए, हमने कहा माता देव होती, लेकिन ये कपिल देव के उपदेश हैं। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा अर्चादाव अर्चये द्यो माम पृथक भाव स राजस। अभिसंधाय, फिर भी, फिर से उसका उद्देश्य क्या है? विषयान, विषय भोग, भक्ति कर रहा है भगवान की लेकिन फिर भी भोग करना चाहता है साथ साथ। यश ऐश्वर्यम एव वा, साथ साथ उसको समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त, लोग मुझको माने कि मैं बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ भक्त हूं, या ऐश्वर्य, उसको वो ऐश्वर्य की लालसा करता है। पृथक भाव स राजस, पृथक मतलब भिन्न, अलग। पिछले श्लोक में भिन्न दृक् शब्द का प्रयोग किया था कपिल देव में, इस शब्द में पृथक भावम, दोनों का मतलब एक ही है। उसका भाव अलग है, किनसे अलग है? भगवान के भक्ति से अलग है, भगवान की सेवा से अलग है, हटके है। भगवान का उद्देश्य एक है लेकिन ऐसे भक्त का उद्देश्य अलग है। क्या है उसका उद्देश्य? वो अपना कुछ चाहता है, उसमें अपना भोग चाहता है, अपना यश चाहता है, अपने लिए ऐश्वर्य चाहता है। तो ऐसी भक्ति को रजोगुणी भक्ति कहते हैं। ये रजोगुणी भक्त होता है जिसके गुण ऐसे होते हैं। और फिर सात्विक भक्ति, इसका वर्णन कपिल देव इस प्रकार से करते हैं। कर्म निर्हार उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेत यष्टव्यम् इति वा पृथक् भावः स सात्विकः। कर्म निर्हारम् उद्दिश्य, परस्मिन् वा तदर्पणम्। उसका उद्देश्य है कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। जब हम ये संसार में कर्म करते हैं तो कर्मों के फल आते हैं। कर्म और कर्मों के फल, इन दोनों की वजह से हम बंधन में अटक जाते हैं। हमें पुनर्जन्म लेते रहना पड़ता है हमारे कर्मों के फल को स्वीकार करने के लिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इस कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्, इसलिए परस्मिन् या भगवान के प्रति अपने कर्मों को अर्पित करते हैं। तद अर्पणम्, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? यत करोषि दशनासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, सब मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करते हुए करो। ये कर्म योग है। हमारे सारे कर्मों का फल हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस भावना को रखता है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो यह भी एक स्वार्थ है। इसलिए यहां पर पृथक भाव स सात्विक। तो हालांकि यह सात्विक भक्ति है, तमोगुणी और रजोगुणी भक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी कपिल देव कहते हैं पृथक भावम, फिर भी यह भिन्न है। क्योंकि भगवान से क्या लेना देना इसमें? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारी भक्ति चाहते हैं, न केवल हमारे जन्म मृत्यु के बंधन से हमारी मुक्ति चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में क्या कहते हैं? न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयी। जन्मनि जन्मनीश्वरे, तो मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं, केवल आपकी अहित की सेवा हेतु नहीं, अन्यथा मुझे संसार का धन स्त्री वगैरह कोई कुछ नहीं चाहिए। तो यह है वास्तविक निस्वार्थीपण। लेकिन यहां पर यह सूक्ष्म स्वार्थ है। हालांकि यह तमोगुणी रजोगुणी से ज्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का इसमें अलग एजेंडा है, अलग इच्छा है, अलग उद्देश्य है, अपना है उसमें स्वार्थ। मैं मुक्त होना चाहता हूं कर्म बंधन से, क्योंकि कर्म बंधन की वजह से बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, मैं इस कष्ट से मुक्त होना चाहता हूं। भगवान के भक्ति मार्ग में भक्त अपने कष्ट का विचार नहीं करता है, अपने सुविधा असुविधा का विचार नहीं करता है, वो केवल भगवान की संतुष्टि चाहता है। इसको सच्चे भक्ति कहते हैं। वो आप कहानी कई बार सुन चुके हैं कि जब श्री कृष्ण को एक बार सरदर्द हुआ और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ही उपाय है और वो है मेरे भक्तों की चरण धूली, तो सब भक्तों ने कहा, रे हम कैसे दे सकते, हम तो नरक में जाएंगे, हमारी चरण धूली और वो भी भगवान के सर के ऊपर, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि अब गोपियों के पास जाके पूछो, तो गोपियों ने क्या किया, तुरंत अपने पैरों के नीचे जो धूल था वो भर भर के दिया, ले लो, ले जाओ कृष्ण के लिए। अरे क्या तुम नहीं जानते तुम नरक जा सकते हो? कोई बात नहीं, हम अनंत काल तक नरक में निवास करने के लिए तैयार हैं। अगर एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को सरदर्द से थोड़ी राहत मिल गई, थोड़ा आराम मिल गया, तो ये है भक्ति, सच्ची भक्ति। तो कोई व्यक्ति अगर ये भी चाहे मैं कर्म बंधन से मुक्त हूं, एक साधारण दुनिया के दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा उद्देश्य है, वो सोचेंगे। लेकिन जो भक्ति मार्ग में निपुण नहीं है, प्रवीण नहीं है, अनुभवी नहीं है, वो इस सूक्ष्म तत्व को नहीं जानते, इस अंतर को नहीं जानेंगे कि सात्विक भक्ति में और पराभक्ति में, केवला भक्ति में अंतर क्या है। सात्विक भक्ति में भी व्यक्ति जो है भक्त अपना कुछ चाहता है, इसलिए यहां पर भी पृथक भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। और फिर कपिल देव जो है असली भक्ति का, पराभक्ति, केवला भक्ति का वर्णन करते हैं इस श्लोक में, जो कि कुंती महारानी के इस श्लोक से बिल्कुल मिलता जुलता है। और आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए, मन गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनो गते अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो बुधो मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनो गतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो बुधो लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदारितम् अहैतुक्यव्यविहता या भक्तिः पुरुषोत्तमे मद्गुण श्रुति मात्रेण। कपिल देव कह रहे हैं, जो कि भगवान के अवतार हैं, मद्गुण जो मेरे गुरों गुणों का श्रवण मात्र करता है, श्रवण मात्र से क्या होता है, जब ऐसा भक्त भगवान के गुणों का श्रवण करता है, मैं सर्व गुहाशये, मैं जो कि सारे प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता हूं, मनोगति अविच्छिन्ना, उसकी मन की गति बिना कोई रुकावट के कहां जाती है, यथा गंगा, गंगा जो गंगा जैसे सागर की ओर चलती है, अम्बुधो, अम्बुधो मतलब पानी, समुद्र, और गंगा का जल जैसे सीधे समुद्र की ओर चलता है, वैसे ही मेरे शुद्ध भक्त का मन बिना कोई रुकावट के मेरी ओर चले आता है, जैसे ही वो मेरे गुणों का श्रवण करता है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो बुधौ। तो इसी प्रकार का श्लोक है, कपिल देव भी इसी बात को दोहराते हैं और फिर कहते हैं लक्षणम भक्ति योगस्य, ये भक्ति योग के लक्षण हैं। अब पिछले तीन श्लोकों में उन्होंने तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सात्विक भक्ति तीनों का वर्णन किया है, और अब भी भक्ति के ही लक्षण का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कौन सी भक्ति है ये। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहरतम, निर्गुणस्य तीन गुणों के परे निर्गुण अवस्था, और ऐसे भक्ति को करने से कि इसके लक्षण क्या होते हैं कि अहैतुकी और अव्यविहता, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई भौतिक इच्छा के, बिना कोई लोभ के, या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति की जाती है, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण मतलब न ये सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है, शुद्ध भक्ति, पराभक्ति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। पराम मतलब परा, पराभक्ति, श्रेष्ठ भक्ति। केचित केवलया भक्त्या, तो ये केवला भक्ति जो है, इसकी बात यहां कुंती महारानी कह रही है। तो ये चार प्रकार की भक्ति हुई, बल्कि चार ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नवधा भक्ति में जो नौ मार्ग हैं, उनमें से हर एक जो अंग है वो रजोगुणी तमोगुणी सात्विक भी हो सकता है। तो देखिए कितने भाग हुए, श्रवण रजोगुणी हो सकता है, श्रवण तमोगुणी हो सकता है, श्रवण सत्वगुणी हो सकता है, श्रवण निर्गुण भी हो सकता है। इस समय हम सबका श्रवण कैसे है, हम सबको अपने अपने मन में ही वो विश्लेषण करना है। तो यहां कपिलदेव ये बहुत गहरी बात की शिक्षा अपनी माता देवहूति को दे रहे हैं, और इसी बात को माता कुंती भी यहीं पे कह रही हैं। तो कुंती महारानी के चरण कमलों में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में भी भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी ही स्वाभाविक रुचि, आसक्ति या आकर्षण जागृत हो जाए, जो कि बिना रुकावट के सीधे उनकी ओर चले, भगवान के चरण कमलों की ओर चले, जैसे गंगा समुद्र की ओर चलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा।
क्या टाइम हुआ? काफी टाइम हो गया, कितना समय हो गया?
थोड़ा समय ज्यादा हो गया नहीं? तो कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी कुछ? यहां तो केवल समय ही है, सबने, किसी ने मोबाइल नहीं लाया ना, बंद किया ना सबने मोबाइल फोन, रेंज नहीं है ना, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो क्या है, मत गुण श्रुति मात्र, भगवान कहते कि मेरे गुणों को सुनकर उनकी ओर जाना चाहिए, या मोबाइल से कोई और गुणों का श्रवण होके मन वहां चले जाता है दूर। प्रश्न ये है कि कई बार लोग पूछते हैं कि लोग यहाँ दुनिया में सन्यास क्यों लेते हैं, क्या वो संसार से दूर होने के लिए लेते हैं? तो इसका प्रश्न तो इस प्रवचन में था आज का। अगर कोई सन्यास ले भी, आवश्यक नहीं है भक्ति के लिए सन्यास लेना, लेकिन अगर कोई ले भी तो क्या कारण होना चाहिए? केवल भगवान की भक्ति के लिए। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम, ये निष्ठा, परात्मनिष्ठा, इसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये सन्यास लिया जाता है। नहीं तो अन्यथा कलयुग में वर्जित है सन्यास लेना, ताकि भगवान की सेवा, भगवान का के नाम का प्रचार और अच्छी तरह से हो, इसलिए संन्यास लिया जाता है, केवल संसार से दूर भागने के लिए नहीं। वैराग्य का जीवन केवल इसलिए अपनाना नहीं चाहिए कि हम संसार के कष्ट से डर रहे हैं। अगर हम संसार में जाएंगे तो हमें नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, परिवार को संभालना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा, तनाव होगा इसलिए हम ये नहीं करेंगे, नहीं। किसी भी अवस्था में हम भगवान की सेवा कर पाए कर सकते हैं, और जिस परिस्थिति में है उसके कर्तव्यों को पालन हमें सही ढंग से करना चाहिए, करते करते भगवान की भक्ति करने चाहिए, ऐसे भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। और एक प्रश्न है, कभी हम तमोगुण में होते हैं और कभी कभी रजोगुण में होते हैं, तो कब हम सुधार कर सकते हैं? वो हमारे ऊपर है। जितनी ज्यादा हम श्रवण कीर्तन करेंगे, जितनी ज्यादा हम भक्तों की सेवा करेंगे, हम सत्संग में आएंगे, उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही तेज गति से हम प्रगति कर पाएंगे। प्रवचन से संबंधित कोई ऐसे प्रश्न हो तो कीजिए, ये ऐसे जनरल प्रश्न है। बात तमोगुणी रजोगुणी या सतोगुणी से शुरू करे तो धीरे धीरे निर्गुण भक्ति करने तक स्थित हो जाएगा क्या? हो सकता है, जरूर प्रगति करेगा। ये भक्ति श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है, एक राजमार्ग है जिसमें व्यक्ति आंख बंद करके भी चलता रहेगा तो अपने गति में पहुंच जाएगा। लेकिन चलना चाहिए आदमी को, अब वो उधर ही बैठ गया तो कुछ नहीं हो सकता है। बस हमें करते रहना है, छोड़ना नहीं चाहिए। जो हमें नियम विधि विधान बताए हैं, निषेध विधि निषेध सब बताए हैं, जो बताया गया बस उतना करना है और कुछ नहीं। कोई नई नई बात नहीं है कि हर दिन हमको कुछ नया कुछ संशोधन करके निकालना कि इस बार भक्ति कैसे हो, अब 2006 साल में कैसे अलग तरह से भक्ति हो, 2007 में कुछ अलग ही होगा कुछ भक्ति करने का मार्ग, ऐसे नहीं है। या बेलगाम में एक तरह का भक्ति है, बंबई में दूसरा ही मंत्र है कोई, ऐसा नहीं है। वही वही चीजें हैं, लेकिन इसकी खूबी है कि फिर भी ये हमेशा ताजा रहता है। बस वही हमें करते रहना है, करते रहना है, और आगे हम जरूर प्रगति करेंगे। वैसे तो हम किसी भी पृथ्वी के किसी भी परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण की अपेक्षा करनी चाहिए? अवश्य। जानबूझकर अपने को क्यों ऐसे परिस्थिति में डालना है जो प्रतिकूल है ना? जब हम कहते हैं कि हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन सुख अपने जीवन में आए तो जबरदस्ती बाहर नहीं भेजना चाहिए, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अपने आप अगर बिना प्रयास किए हुए आता है तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना ठीक है। जैसे अगर बैठे बैठे अचानक आपको मनी ऑर्डर आ गया कि आपका कोई, आपने भूल गए थे, आपके कोई चाचा मामा कोई थे जिन्होंने आपके लिए 10 लाख रुपए रख दिए, अचानक मनी ऑर्डर आ गया, तो कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी परिस्थिति है उसमें भक्ति हमें करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हम आशा करते हैं कि एक दिन हमारी भक्ति श्रेष्ठ होगी, सबसे शुद्ध होगी, तो हम ये भी आशा करते हैं कि हमें कोई ऐसे वातावरण मिले जिसमें हमारी भक्ति की प्रगति अच्छी तरह से हो। तो ये एक प्रामाणिक इच्छा है, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु हमें जानना चाहिए कि अगर भगवान हमें जबरदस्ती कोई परिस्थिति में डालते हैं तो उस परिस्थिति में संतुष्ट होकर जितना हो सके भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। लेकिन जहां तक हमारा कंट्रोल है, जहां तक हमारी शक्ति है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे कोई अनुकूल परिस्थिति में ही हम जिएं। जैसे उदाहरणार्थ अगर आप घर खरीद रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो आपको चयन करना है कि कहां पर हम घर बनाएं। अगर मंदिर के पास हो सकता है तो अच्छा है, ताकि मंदिर में ज्यादा आना जाना हो सके। ऐसे जगह में नहीं जाए जहां पास में कसाई खाना है, जहां शराब के अड्डे हैं। तो भक्त है, स्वाभाविक रूप से देखेगा कि क्या अनुकूल है क्या अनुकूल नहीं है। अगर हो सकता है तो ऐसा करना चाहिए, अगर संभव नहीं है कि मंदिर के पास में हो, कोई बात नहीं, जहां है वहीं पे रहकर हम बार बार आ सकते हैं मंदिर में, अपने घर में भी हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। तो जहां तक हमारे लिए संभव है हमें अनुकूल परिस्थिति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जब हम जप करते हैं तो हम भगवान के भक्तों को याद करते हैं, क्या ये ठीक है या नहीं है। जब हम जप करते हैं तो भगवान का नाम ही श्रवण करना चाहिए। ये कोई हमारी पद्धति नहीं है कि भगवान का जप करते समय भगवान के भक्तों की को हम के बारे में हम सोचेंगे, फिर ये भी सोचेंगे अरे कल उसने मुझे ऐसे कहा था हा? अच्छा उसने, अच्छा तो परसों मैं उसको ऐसे सुनाऊंगा। तो जप करने के बजाय हम सोच रहे हैं, हम भक्तों के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसमें क्या है। उसने प्रसाद के लिए वो भक्त को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो नाम का जप करते समय केवल नाम ही चाहिए और कुछ नहीं। जब बच्चा पेट में रहता है उसके ऊपर जप चरणामृत तथा कृष्ण प्रसाद कैसा प्रभाव करता है, क्या पैदा होने पर वो बच्चा भक्त बन सकता है। अभी ये सब अनुकूल चीजें हैं भक्ति के लिए। अब बच्चा तो अपने पूर्व जन्म से कोई कर्म लेके आ रहा है साथ में, वो क्या पिछले जन्म से लेकर आ रहा है हमें नहीं पता। लेकिन अगर माता पिता अच्छे भक्त हैं, उन्होंने घर में अच्छे संस्कार बनाए रखे हैं, और जब से बच्चा पेट में है उन्होंने ऐसे चरणामृत कृष्ण प्रसाद कृष्ण नाम का वातावरण बना के रखा है घर में, और कोई बुरा प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं आने को दिया है हालांकि वो पेट में है, तो पूरे पूरे पूरी संभावना है कि बच्चा आगे चल के अच्छा भक्त बनेगा। लेकिन फिर भी वो भगवान के हाथ में है इसमें हो तो। लेकिन जो भी वो बच्चे को फायदा मिला हो, बच्चे को फायदा मिला हो इस श्रवण कीर्तन से, अगर शुरुआत में वो अच्छा भक्त नहीं भी हो, लेकिन जो आपने उसको फायदा दिया है एक अच्छे वातावरण में रख के, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका लाभ अवश्य होगा। आज नहीं तो कल वो अच्छा भक्त बनेगा ही बनेगा। जब तक हम भौतिक जगत में रहेंगे तो हमें तीन गुणों में रहना है, हम तीन गुणों में रहते हैं, तो कौन सी श्रेष्ठ भक्ति है तीन गुणों में, तो आप उत्तर दीजिए। हमें तीनों में नहीं चाहिए ना, हमें रजोगुणी चाहिए, तमोगुणी चाहिए, सतोगुणी भक्ति चाहिए। हमें कौन सी भक्ति चाहिए? निर्गुण भक्ति चाहिए, केवला भक्ति चाहिए। चाहे हम कौन किसी भी गुण में स्थित क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रयास वहां रहना चाहिए, उस निर्गुण भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी संन्यास में दीक्षा लिया कैसे समझने, उनके गुरु ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लिया था जो कृष्ण के बड़े भक्त थे। हाँ, तो इनका प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से, ईश्वरपुरी ने दीक्षा ली थी माधवेंद्रपुरी से, जो महान भक्त थे, ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी दोनों महान भक्त थे कृष्ण भक्त। तो फिर हम ऐसा कैसे फिर कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी संप्रदाय में दीक्षा लिया? उन्होंने संन्यास दीक्षा केशव भारती महाराज से लिया। केशव भारती महाराज ने बाहरी रूप से देखा जाए तो मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, वो सब जितने भी साथ जिन्होंने लीला किया वो सब उनके नित्य पार्षद हैं, सब कृष्ण भक्त हैं, लेकिन बाहरी रूप से ये सब लीला कर रहे हैं। और बाहरी दृष्टि से भी जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उन्होंने सबसे पहले केशव भारती महाराज के कान में कहा, क्या आप मुझे ये मंत्र से दीक्षा देने वाले हैं? और फिर वो मंत्र बोला उनको, और ऐसा वो मंत्र बोल के पहले केशव भारती महाराज को उन्होंने दीक्षा दिया उस मंत्र के माध्यम से, तो वो वैष्णव बने। फिर उनसे वही मंत्र स्वीकार किया, फिर वो वैष्णव दीक्षा हुई, क्योंकि वो तो भगवान है ना, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, वो तो डायरेक्ट किसी को दीक्षा दे भी सकते हैं अगर चाहते हैं तो, ऐसे वैष्णव आचार्यों ने समझाया है। ऐसे बताया जाता है केशव भारती महाराज कृष्ण लीला में अक्रूर थे, सब भक्त ही है, लेकिन बाहरी दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे मायावादी भारतीय संप्रदाय में क्यों दीक्षा लिया? क्योंकि उस समय मायावादी संप्रदाय को लोग मानते थे और वैष्णव संप्रदाय को कोई लोग मानते नहीं थे, क्योंकि वैष्णव कोई जानता भी नहीं था, और ऐसे जो भी वैष्णव थे वो सब बुरे कार्यों में लगे हुए थे, तो वैष्णव बड़े बदनाम थे उस समय। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्हें वो जानते थे कि मायावादी संप्रदाय के सन्यासियों को लोग बहुत सम्मान करते हैं, तो मैंने भी इस संप्रदाय को अगर स्वीकार किया तो लोग मेरी बात मानेंगे, और मैं बोलूंगा क्या, मैं तो शुद्ध कृष्ण भक्ति या वैष्णव सिद्धांत ही बोलूंगा। भगवान के धाम का प्रतिबिंब यह पृथ्वी जगत है, तो भगवान के धाम में आम के पेड़ को अंगूर मिलते तो यहां पृथ्वी जगत में क्यों नहीं? बड़ा बुद्धिमान प्रश्न है वो ना। या आम के पेड़ से अंगूर क्यों नहीं मिलते, जैसे हमने कहा ये तो बात नहीं, आम के पेड़ से आम भी नहीं मिलते हैं। प्रतिबिंब होने का मतलब ये है कि केवल रूप में दिखने में ऐसे लगते हैं लेकिन तत्व में ठीक नहीं है, तत्व में एक नहीं है, वो चिन्मय है और ये भौतिक है, तत्व में अंतर है, केवल प्रतिबिंब मात्र में एक है। और क्योंकि यह तत्व अलग है, यह भौतिक है और वो आध्यात्मिक है, चिन्मय तत्व ही ऐसा है कि वो चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, सब कुछ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यहां पे कोई चिन्मय चीज नहीं है, यहां पे ये जड़ जगत है, ये सब चीजें जड़ हैं, इसलिए इनसे हमें ऐसे कल्प वृक्ष की तरह भिन्न भिन्न चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। और एक प्रश्न के हमने कहा था कि कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हमें उनके भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन हम उनके भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और वो प्रसन्न नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अंग्रेजी में कहावत है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, मतलब करते रहो, भले इस बार असंतुष्ट है, अगली बार असंतुष्ट है, 5 बार 10 बार 20 बार, आखिर वो थक के संतुष्ट होंगे ही ना, कोई बात नहीं, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। जनरल प्रश्न कब करना है, ये प्रश्न है, वो जनरल टाइम में करेंगे। क्या साइंटिस्ट मुर्दे होते हैं? अब हमको आप तकलीफ में डालेंगे, तो उत्तर देंगे, फिर कहीं जाके आप बोलेंगे हमने मंदिर में सुना कि आप सब मुर्दे हैं, तो वो सब हमारे मंदिर के प्रति गुस्से हो जाएंगे। तत्व को हमें समझना चाहिए कि जो भगवान का भक्त नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, इस दृष्टि से बताया जा रहा है कि कोई मुर्दा है। प्राण हेतु जार सही हेतु प्रचार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जिसके अंदर प्राण है उसको प्रचार करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करना चाहिए, नहीं तो प्राण होने का क्या मतलब है। पशु पक्षी में भी है, कीड़े में भी है, खटमल में भी है, ठीक है। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संन्यास लेता है और फिर उसका परिवार उसके ऊपर निर्भर होता है तो ये विरोधाभास है। संन्यास लेने के बाद कोई अपना परिवार का देखभाल नहीं करता है। शायद आप ब्रह्मचारी और सन्यासी में थोड़ा भेद समझे नहीं है। ब्रह्मचारी और सन्यासी में भेद होता है। जब सन्यासी होता है व्यक्ति तो उसे अपने परिवार से संबंध काटना होता है पूरी तरह से, और फिर परिवार को बहुत कठोर नियम होते हैं, खास करके मायावादी संप्रदायों में विशेष करके। लेकिन फिर भी हमने देखा शंकराचार्य भी, चैतन्य महाप्रभु भी गए थे वास्तव में एक बार, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में इतना कठोर नियम नहीं है, क्योंकि यहां संन्यास का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार, न केवल वैराग्य। हालांकि जिसने भी एक वैराग्य का जीवन अपनाया है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, एक सिद्धांत तो अवश्य है कि पारिवारिक संबंध बिल्कुल कम होना चाहिए, अगर हो भी तो बिल्कुल कम। तो क्योंकि ये खतरा है कि पुनः वो आसक्त होकर उस पुराने जीवन में चले जाए, इसलिए ये कॉन्टेक्ट जो होता है ये बहुत ही कम होना चाहिए। लेकिन कोई अगर संन्यास लिया है जिसने, फिर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, वो अलग बात है। लेकिन आजकल संन्यास कितने लोग ले रहे हैं बताइए, बेलगाम में कितने हैं?
माधवती थी भक्ति जननी, यतन पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली, परम आदर बोरी। कृष्ण बसती बसती बोली, परम आदर बोरी। शुद्ध भक्त चरण रेरो भजन अनुकूल, गौर आमज सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे। सब स्थान हेरिबोहामी प्रणय भकत संगे। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, मृदंग वाद्य सुनित मन अवसर सदा जाचे। गौरवित कीर्तन सुने आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होया। प्रसाद सेवा करित होय सकल प्रपंच जय, शुद्ध भक्त चरण रेणु चरणानु भजनानुकूल, जदिन गृह भजन देखी गृहत गोलोक भाए, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाए, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी, गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक मानी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो ये ताहा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ये भजन बहुत सुंदर है और आवश्यक है. गौड़ीय वैष्णव में ये भजन बहुत अक्सर गाया जाता है. वृंदावन हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी हर एकादशी को ये भजन अवश्य गाया जाता है.
जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल 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 नित्य गौर हरि बोल।